ये आकाशवाणी है। अब आप अंजलि से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों और अभिभावकों का दायित्व है कि वे बच्चों को इस प्रकार से शिक्षित करें कि बच्चे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करें। राष्ट्रपति ने आज शाम नई दिल्ली में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार में भी होना चाहिए। राष्ट्रपति ने शिक्षकों से कहा कि उनके विद्यार्थियों की पीढ़ी विकसित भारत का निर्माण करेगी। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय कौशल प्राप्त करने की परामर्श दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महान शिक्षक एक महान राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि ये मानव विकास का एक पवित्र मिशन है। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्राप्त प्रमाण पत्र, 50,000 रूपये का नगद और एक रजत पदक शामिल है। भारत और सिंगापुर ने स्वास्थ्य तथा औषधि, शिक्षा और कौशल विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर प्रणाली साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर भी सहमत हुए, जिससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉक के बीच आज हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंगापुर का भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 160 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों को सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी में भागीदारी का निमंत्रण दिया। ये प्रदर्शनी इस महीने ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुख रत्नम से भी मुलाकात की। इससे पहले ब्रुनेई की अपनी सफल यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री कल लॉयन सिटी सिंगापुर पहुंचे। प्रधानमंत्री सिंगापुर की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों से रूस यूक्रेन संघर्ष, इसराइल हमास संघर्ष और बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति जैसी घटनाओं का विश्लेषण करने और किसी भी अप्रत्याशित चुनौती के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने उत्तरी सीमा पर स्थिति और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले पड़ोसी देशों के घटनाक्रम को देखते हुए वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों द्वारा व्यापक विश्लेषण के महत्व पर बल दिया। इस सम्मेलन का विषय सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2025 के लिए 7.2% की वृद्धि का अनुमान है। मुंबई में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वार्षिक एफआईबीएसई 2024 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त आंकड़ा है कि विकास चालकों के मूल सिद्धांतों में सुधार हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास और मुद्रास्फीति के बीच व्यापक संतुलन के साथ साथ आर्थिक और वित्तीय स्थिरता से आगे बढ़ रही है। श्री दास ने कहा कि भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक नागरिक को उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो और आवश्यक वित्तीय साक्षरता हो। पेरिस पैरालंपिक्स के 8वें दिन आज पुरुषों के 60 किलोग्राम J1 पैराजूडो स्पर्धा में कपिल परमार ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कपिल ने अब से कुछ देर पहले ब्राजील के एलिल्टोन डी ओलिवेरिया को 10-0 से हराकर कांस्य पदक देश के नाम किया। पैरालंपिक में जूडो में भारत ने पहली बार क्वालिफाई किया और पदक भी जीता। तीरंदाजी के मिक्स टीम रिकर्व ओपन में स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह और पूजा जत्यान की जोड़ी कांस्य पदक के लिए अपनी चुनौती पेश कर रही है। महिलाओं की 100 मीटर T12 स्पर्धा में सिमरन ने 12.33 सेकंड का समय लेकर फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। फाइनल मुकाबला आज रात खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पैरालंपिक के एक सिंगल संस्करण में सबसे अधिक पदक जीतने के लिए पदक विजेताओं को बधाई भी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।